नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। डॉक्टरों ने कहा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण दवा की कमी से जल्द ही मौतें हो सकती हैं, क्योंकि अस्पताल अपने रोगियों के लिए जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को स्थगित करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक दवाएं नहीं हैं। श्रीलंका अपनी चिकित्सा आपूर्ति का 80% से अधिक आयात करता है, लेकिन संकट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो रहा है। आवश्यक दवाएं अलमारियों से गायब हो रही हैं और स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त होने के करीब है। वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो के बाहरी इलाके में 950 बिस्तरों वाले अपेक्षा कैंसर अस्पताल में मरीज और उनके प्रियजन डॉक्टरों की कमी के कारण तेजी से असहाय महसूस होता है, जो परीक्षणों को स्थगित करने और महत्वपूर्ण सर्जरी सहित प्रक्रियाओं को स्थगित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कैंसर रोगियों के लिए बहुत बुरा है। डॉक्टर रोशन अमरतुंगा ने कहा, अगर स्थिति में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो कई मरीजों को आभासी मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे विनाशकारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो कोविड द्वारा पर्यटन निर्भर अर्थव्यवस्था, बढ़ती तेल की कीमतों, लोक लुभावन कर में कटौती और रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध के कारण लाया गया, जिसने कृषि को तबाह कर दिया। थाईलैंड की योजना एजेंसी ने सोमवार को कहा कि पहली तिमाही में थाईलैंड की आधिकारिक बेरोजगारी दर महामारी के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर आ गई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने अपने अधिकांश प्रतिबंधों में ढील दी है, क्योंकि संक्रमण में गिरावट आई है और अपने महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के लिए जून से नाइट लाइफ पर प्रतिबंध हटा देगा। राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि थाईलैंड की आधिकारिक बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर 1.53% रह गई, जो 610,000 बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है, जो पिछली तिमाही में 1.64% थी। अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्ण प्रभावों को महसूस करने से पहले 2020 की पहली तिमाही में दर्ज 1.03% के बाद से ये सबसे कम था। हालांकि थाईलैंड में बेरोजगारों की परिभाषा संकीर्ण है और केवल उन्हें बेरोजगारों के रूप में गिना जाता है जो एक सर्वेक्षण सप्ताह में एक घंटे भी काम नहीं करते हैं। इसमें व्यवसायों या खेतों के मालिकों को भी शामिल नहीं किया जाता है और विश्लेषकों का कहना है कि आंकड़े थाईलैंड की महत्वपूर्ण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नहीं पकड़ते हैं। लगभग 1.5 वर्षों में अपने सर्वश्रेष्ठ सप्ताह के बाद सोमवार को चीन के युआन ने डॉलर के मुकाबले लाभ बढ़ाया। मजबूत केंद्रीय बैंक मार्गदर्शन और शंघाई द्वारा अपने कुछ कोविड प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद बेहतर भावना का समर्थन किया। शंघाई के वित्तीय केंद्र ने रविवार को दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली के एक छोटे से हिस्से को फिर से खोल दिया, जब कुछ लाइनें लगभग 2 महीने तक बंद रही, क्योंकि शहर ने अपने दर्दनाक लॉकडाउन को और अधिक पूर्ण रूप से उठाने का मार्ग प्रशस्त किया। MUFG बैंक में एशिया के वैश्विक बाजार अनुसंधान के प्रमुख ली लिन ने कहा, शंघाई की योजना धीरे धीरे फिर से खोलने और जून के अंत तक पूर्ण खुलेपन तक पहुंचने के साथ शंघाई में गतिविधियों में क्रमिक रूप से सुधार होगा। निकट भविष्य में कोविड रोकथाम उपायों में संभावित मामूली सुधार होगा, लेकिन अभी भी वर्तमान राष्ट्रीय गतिशील शून्य कोविड नीति पर बदलाव का कोई संकेत नहीं है। बाजार खुलने से पहले पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने शुक्रवार को पिछले फिक्स 6.7487 की तुलना में मिड पॉइंट दर 6.6756 प्रति डॉलर 731 पिप्स या 1.1% मजबूत निर्धारित की। सोमवार के आधिकारिक मार्गदर्शन में कदम 2 सप्ताह से अधिक समय में सबसे मजबूत फिक्सिंग, 2005 के बाद से प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ी एक दिवसीय मजबूती थी, जब चीन ने मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया और ग्रीन बैंक के खिलाफ एक दशक पुरानी खूंटी को छोड़ दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुस्लिम लीग N की उपाध्यक्ष मरियम नवाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष ने मुल्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के लिए कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मरियम, देखो थोड़ा ध्यान से, तुम्हारा पति नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम मेरा नाम लेती हो। इमरान खान ने कहा कि उनके किसी जानने वाले ने सोशल मीडिया पर उन्हें मरियम नवाज के भाषण की एक क्लिप भेजी। इमरान ने कहा, मैंने क्लिप देखी। सर गौधा रैली में मरियम नवाज ने जिस जज्बे और जुनून से मेरा नाम लिया, उसके लिए मैं उससे कहना चाहूँगा कि मरियम थोड़ा सावधान रहें। जिस तरह आप लगातार मेरा नाम ले रही हैं, आपके पति परेशान हो सकते हैं। इमरान खान के इस बयान की पूरे पाकिस्तान में कड़ी आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री और मरियम के चाचा शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर लिखा, देश की बेटी मरियम के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा की पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। खासकर महिलाओं को इमरान खान के बयान की कड़ी निंदा करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका समेत यूरोपीय देश ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन रूस पर इन पाबंदियों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इन्हीं पाबंदियों पर पलटवार करते हुए रूस ने 963 अमेरिकी लोगों की लिस्ट जारी की है। अब ये सभी नामचीन हस्तियां रूस में एंट्री नहीं कर सकेंगी। वहीं रूस की इस लिस्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं है। उन पर बैन नहीं लगा है, जबकि उनके खिलाफ रूसी संबंधों को लेकर जांच भी चली थी। रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जिन लोगों पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें प्रमुख रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के नाम भी शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।